नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमराह जायरीन को ले जा रही एक डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। एक रिपोर्ट।
ये दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम के स्थान पर हुई। डीजल टैंकर से टकराते ही बस में तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक हैदराबाद के थे। हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सऊदी अधिकारियों और तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ संपर्क में है। पीड़ित मदीना के 4 अस्पतालों में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है।
आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई। अभी इस बार तकरीबन 31 मिलिटेंट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा। तो कहने का ये मतलब है पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है। आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ का मोह भंग होता जा।
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने NIA की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली है। NIA ने कल अली को गिरफ्तार किया था। हमले में इस्तेमाल की गई कार इसके नाम पर पंजीकृत थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने के संबंध में एक पत्र सौंपा। राष्ट्रीय विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है, जो देश के तेज आर्थिक विकास और बढ़ते संपर्क को दर्शाता है। उन्होंने नई दिल्ली में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के मंडप का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। श्री नायडू ने बच्चों में नागरिक उड्डयन ज्ञान के संचार, तकनीकी समझ के विस्तार और भविष्य के लिए कुशल कार्यबल को प्रेरित करने पर बल दिया। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका से LPG के आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कंपनियां प्रति वर्ष 22 लाख टन LPG आयात करेंगी। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई। और खेलों में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के गुरप्रीत सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में उन्हें यूक्रेन के पावलो कोरोस्टाइलो से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।